Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద జయ గౌర ప్రేమానందే నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సరస్వతీ దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేషాయ శూన్యవాదీ పాశ్చాత్య దేశ తారిణే గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికా తదాల్యే కృష్ణాయ కృష్ణభక్తాయ తద్భక్తాయ నమో నమః ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్యః నామని గౌరాత్విషే నమః జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్యః ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాస్ ఆది గౌర భక్త వృంద హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ ఆరాధా బహరేనేశ్వర మందిర్ ఇస్కాన్ బహరేన్ మే ఆప్కా ప్రాత శ్రీ చైతన్య చరితమృత కే సత్సంగ్ మే స్వాగత్ హై శ్రీ చైతన్య చరిత అమృత్ శ్రీ కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి के द्वारा ये मधुर शास्त्र जिसमें श्री कृष्ण क्या सोचते हैं, भगवत गीता है जिसमें भगवान क्या बोलते हैं, भागवत है जिसमें भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या बोलते हैं आप तो बाहर भी सुन सकते हो, भगवान क्या करते हैं जब उनके घर में जाएंगे तब देखेंगे, लेकिन भगवान क्या सोचते हैं ये तो घर में जाने से भी पता नहीं लगेगा, ये जो बहुत सेवा करेंगे तब पता लगेगा। तो चैतन्य चरितमृत भगवान क्या सोचते हैं, ये भगवान का सोच जो है ये बहुत अंतरंग है। तो प्रभुपाद जी एक बड़े प्रोग्राम से आ रहे थे बंगाल में, तो बाहर किसी ने कहा प्रभुपाद बहुत अच्छा बंगाली स्वीट है, प्रभुपाद ने कहा एक ही बंगाली स्वीट है। बोलो नहीं नहीं, देखो रसगुल्ला है, संदेश है, बोले एक ही बंगाली स्वीट है चेतन चैतन्यमृत। बंगाली में स्वीट है चेतन चैतन्यमृत, जिसके अंदर मधुर महाप्रभु के लीला का गुणगान किया। वैसे चैतन्य को प्रभुपाद जी ने जब पहले अमेरिका में प्रवचन किया, चेतन्य का मतलब है जीव जो चेतन है, उसके लिए अमृत है, ये भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का जो लीला है ये उसके लिए अमृत है। तो कविराज गोस्वामी ने जो वृंदावन ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा, उसके उपरांत जो विशेष रूप से जो अंत्य लीला है उसका विस्तार से वर्णन किया है। तो चैतन्य चरितमृत तीन भाग में है, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। आदि लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट से लेकर संन्यास तक का वर्णन है, और महाप्रभु के संन्यास लेने से भ्रमण जब तक 6 साल किया, 24 साल की आयु में संन्यास लिया और 6 साल भ्रमण किया दक्षिण भारत में और वृंदावन आए, बंगाल गए, वो जो भ्रमण का समय है उसका नाम है मध्य लीला। फिर 18 साल भक्तों के संग केवल हरे कृष्ण कीर्तन का जप किया और भगवान के लीला का श्रवण किया, वो अंत्य लीला है, वो जगन्नाथपुरी में रहे। तो आज हम मध्य लीला का 25वां अंतिम अध्याय पढ़ रहे हैं। इस 25वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से यात्रा करके प्रयागराज में रूप गोस्वामी को 10 दिन भक्ति रसामृत सिंधु की शिक्षा देकर और बनारस पहुंचे हैं वाराणसी, और 2 महीने चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में रहे। इस बीच में रूप गोस्वामी वृंदावन पहुंचे, 1 महीना मथुरा में सुबुद्धि राय के साथ रहे, और फिर अपने भाई सनातन गोस्वामी को ढूंढने के लिए गंगा के रास्ते से, गंगा के किनारे किनारे चल के और प्रयाग की तरफ चले हैं। और दूसरी तरफ सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से आके बनारस में मिले हैं वाराणसी में, और 2 महीने वहां रहे हैं महाप्रभु के संग में, और वहां से महाप्रभु, ये जहां हम पढ़ रहे हैं ये जो सेक्शन है इसमें महाप्रभु अब वाराणसी से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए, और जो उनके साथ जाना चाह रहे थे उनको कहा नहीं आप यहीं रहो, जो काशी मिश्रा और 4-5 महाराष्ट्र ब्राह्मण, और सनातन गोस्वामी को कहा कि आप वृंदावन जाओ। तो महाप्रभु अब यहां से वापस चले गए जगन्नाथपुरी, अब इसके बाद बाहर कहीं नहीं जाएंगे, ये उनकी अंतिम यात्रा। उन्होंने जो कुछ शिक्षा देनी थी वो रूप सनातन गोस्वामी को दे दी, वो सारा वैष्णव सिद्धांत ये अंतिम यात्रा में उन्होंने सारा सिद्धांत दे दिया, रूप शिक्षा और सनातन शिक्षा। अब कविराज गोस्वामी ने कथा पूरी ही कर दी, फिर बोलता है एक बात और आपको कहने जा रहा हूं। ये जो श्लोक है ये 25वां अध्याय पूरा कर दिया, कह दिया जो चैतन्य महाप्रभु की लीला पड़ेगा उसको चैतन्य महाप्रभु की भक्ति मिलेगी, चरण मिलेंगे, और ये सारे अध्याय में विशेष रूप से मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु भागवत की महिमा वेदांत सूत्र के उपनिषदों के सार के रूप में, के सारे शास्त्रों का सार है भागवत, और ये उपदेश उन्होंने प्रकाश आनंद सरस्वती को दिया, और सारे बनारस के जितने सन्यासी थे उन सबको वैष्णव बनाया। क्योंकि हर अध्याय का जो पहला श्लोक है, हर अध्याय का जो पहला श्लोक है वो संस्कृत में कविराज गोस्वामी उस अध्याय का सार लिखते हैं। इस अध्याय का पहला श्लोक ये है, वैष्णवी कृत्य सन्यासी मुखान काशी निवासिनः। जितने भी मुख्य, एक मुख्य सन्यासी प्रकाश आनंद और जितने सन्यासी काशी में रह रहे थे, उन सब काशी निवासी सन्यासियों को वैष्णवी कृत्य, उनको वैष्णव बनाया। सनातनम संस्कृत्य, और सनातन गोस्वामी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुसंस्कृत्य, कंप्लीटली प्यूरिफाइंग, उनको उनको सारा ही साधन सिखाया और फिर क्या किया, प्रभुर नीलाद्रिम आगमत। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु वापस नीला चला गए। तो ये एक श्लोक में सारे सारे इस अध्याय का सार है। एक श्लोक में हर हर अध्याय के आगे एक संस्कृत श्लोक है, उसमें उस अध्याय का पूरा सार है। अब कहते हैं एक बात आपको कह रहा हूं, वो एक बात क्या कह रहे हैं, जिसे कथा पूरी होने के बाद फिर ये देखो, ये चैतन्य महाप्रभु ये कृष्ण लीला जो लाए हैं, कृष्ण प्रेम लाए हैं, बहुत अति सुंदर समुंदर है, ये बहुत सुंदर, आप इसमें नहा लो, आप अपना जीवन सफल कर लो। चैतन्य महाप्रभु के भक्त बहुत परोपकारी हैं, सब जो को सुनाते हैं, ऐसे कहते हुए अब ये तीन श्लोक चार जो हैं, इसे हम पूरा करते हैं आज इस अध्याय को। अब कह रहे हैं ए अमृत अनुक्षण साधु महंत मेघ गण। ए अमृत, ये जो चैतन्य लीला है, कृष्ण लीला है, ये अमृत है। अनुक्षण, अनुक्षण का मतलब एक एक क्षण में, मतलब हर समय कंटिन्यूअसली, सब समय अनुक्षण कंटिन्यूअसली प्रभुपाद ने लिखा है। वैसे अनुक्षण मतलब पल पल, क्षण क्षण में ये अमृत है। ये अमृत कैसा है, एक अमृत है स्वर्ग का, क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, उसका पुण्य क्षीण होता है और वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है, वो दूसरा अमृत है। ये कैसा अमृत है, ये अमृत अनुक्षण पल पल में बढ़ता है, कम नहीं होता है, ये क्षीण होने वाला अमृत नहीं है, ये धर्मामृत है। ये तो जीव के धर्म का अमृत है। जीव का धर्म क्या है, भगवान की प्रेममयी सेवा। तो ये अमृत जो है आनंदाम बुद्धि वर्धनम, ये बढ़ने वाला है, ये अमृत अनुक्षण बढ़ता है। अब जो कोई चीज बढ़ती है तो उसका कोई उपयोग होना चाहिए ना। तो कहते साधु महांत मेघ गण, ये जो साधु है महात्मा है, ये बादल है, ये बादल है, ये क्या करते हैं, इस अमृत को ऊपर ले जाकर विश्व उद्यान करे वर्षण। विश्व उद्यान, उद्यान का मतलब बगीचा, विश्व मतलब पूरे विश्व में जो भी बगीचे हैं उसके ऊपर वर्षण करते हैं, ये बरसात करते हैं विश्व के सारे सारे दुनिया में, गांव गांव में, शहर शहर में, जो भी सुंदर उद्यान दिख रहे हैं वहां ये वर्षा करते हैं। कौन, साधुगण। वैसे साधुओं को बादल क्यों कहा गया है, मेघ क्यों कहा गया है, एक अन्य स्थान चैतन्य चरितमृत में लिखा है कि वेद शास्त्र समुद्र के समान है, जिसका जल न कोई पी सकता है न खेती में काम आ सकता है। है पानी लेकिन किसी काम का नहीं। और साधु संत हैं मेघ, वो है बादल, वो है क्लाउड, वो उस खारे पानी में से मीठा निकाल के और जब बरसाते हैं तो नदियां बहती हैं और हरियाली हो जाती। तो है तो वेद में तो सब कुछ पड़ा है, लेकिन अपने आप न पीने के काम का है न धोने के काम का है, और नहाने के बाद भी दोबारा नहाना पड़ता है। तो उसको मीठा करते हैं, ये साधु गण इनका काम है। तो साधु उसमें से अमृत निकालते हैं और वर्षा करते हैं। और वहां तो उदाहरण ऐसा दिया है कि चेतना महाप्रभु सागर है और रामानंद राय बादल है। अब बादल का अपना पानी नहीं होता है, पानी तो बादल समुद्र से लेगा, बादल का पानी समुद्र से, क्लाउड का पानी तो ओशन से आएगा। तो जो कुछ बोल रहे रामानंद वो तो लिया है चेतना महाप्रभु से, लेकिन वापस चेतना महाप्रभु को ही सुना रहे हैं। तो बादल जब बरसते हैं तो समुद्र के ऊपर भी पानी गिराते हैं, तो क्या पानी बेकार जाता है क्या? नहीं। समुद्र का एक नाम है रत्नागर, समुद्र को कहते हैं रत्नेश्वर, रतन, रतन का उसके पेट में रतन बनते हैं। वो जो एक बूंद पानी की समुद्र में जब गिरती है और सिप्पी पीती है तो मोती बनता है। तो महाप्रभु को रत्नागर बना दिया, महाप्रभु का जल लेकर महाप्रभु को वर्षा करके और रतन बना दिया। ये बहुत बड़ा सुंदर ये श्लोक लिखा है। तो ये जो जो साधु हैं ये बादल गण हैं, ये एक क्लाउड है और ये जब बरसते हैं तो चारों ओर उद्यान बना देते हैं, विश्व में अच्छे बगीचे बना देते हैं जहां लोग सुख से बैठ सके। फिर क्या कहते हैं, ताते फल अमृत फल, तो उन बगीचों में अमृत का फल फिर पैदा होता है। ये भक्ति अमृत है, ये असल में है क्या, भक्ति रस अमृत है। ये अमृत जब कहेंगे तो इसका नाम पूरा है भक्ति रस अमृत। ये भक्ति रस अमृत है तो ये भक्ति की लता जिसमें से ये फिर रस निकलेगा, ताते फले, उधर उधर उगेगा, क्या उगेगा, अमृत फल, वहां फिर अमृत फल उगेगा, फिर भक्ति का रस अमृत वहां से प्रभाव होगा। भक्त खाए निरंतर, उस भक्ति के फल को निरंतर भक्त खाते रहते, भक्त खाते रहते हैं सब समय, भक्त भक्ति के फल को खाते रहते हैं, भक्ति के रस के अमृत को पीते रहेंगे। अब इस भक्ति के फल का दूसरी परिभाषा अगर चाहिए इस अध्याय के आधार पे, तो श्रीमद् भागवत गलितम फलम। तो श्रीमद् भागवत जो है वो निगम कलपत्रो गलितम फलम, ये है फल। क्योंकि इस अध्याय में इस फल को चेतना महाप्रभु ने प्रकाशानंद को बताया है कि जो आप वेदांत की बात कर रहे हैं उसी वेदांत के ऊपर व्यास देव ने ही भागवत के रूप में 18,000 श्लोक में 335 अध्याय 12 स्कंद में कमेंट्री की, ये महाप्रभु, और चतुर श्लोकी को फिर यहां उनको सुनाया है और फिर कहा है कि ये चार श्लोकों में संबंध अभिधेय प्रयोजन ये तीनों इन चार श्लोकों में है। तो यहां जो ये भक्त खाए निरंतर, ये भागवत के रसास्वादन की बात हो रही है कि भक्त पीवंती भागवतम रसमालयम मुहूर मुहूर भूय भाका, इसको पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, कब, अनुक्षण और निरंतर, इसको पीते जाओ रोज निरंतर अनुक्षण। तारे शेष जिया जिए जग जना, और वो जो भक्त पीते हैं जो थोड़ा सा गिर जाता है शेष बच जाता है वो दुनिया को मिलता है, जग को मिलता है, जनता को मिलता है। तो असल में कहते हैं ये जो जो छलक के नीचे गिरता है ना भक्तों से वो संसार को मिलता है। अब इसको चेतना महाप्रभु के अपने जीवन में देखें तो जब कृष्ण प्रेम का उन्होंने प्रकट्य करके, तो पहले तो एक साल श्रीवास आंगन में स्वयं ने उसको पिया, जो प्रेम का उन्होंने खजाना खोला, अमृत का नाम अमृत का खजाना खोला, तो एक वर्ष तो स्वयं ने पिया अपने अंतरम भक्तों, किसी और को अंदर जाने नहीं दिया, आने नहीं दिया, और जब पेट भर गया तो जो छलक के बाहर गिरा वो बाद में दुनिया को दिया। तो इसलिए किसलिए कहते हैं कि जो रस अमृत पहले भक्त पीता है और बाकी बचता है वो बांटता है। तो बांटना तो है लेकिन पहले स्वयं को रसास्वादन करना है। तो अब इस श्लोक का ट्रांसलेशन है। The devotees who have taken shelter of the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu take the responsibility for distributing the nectarian devotional service all over the world. ये हो गए मेघ, तो क्योंकि बादल किसी एक कंट्री का नहीं होता है, कहीं भी जा सकता है. उसके ऊपर ऊपर मेरे ख्याल में बादल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई पाबंदी नहीं है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. क्लाउड्स कैन मूव एनीवेयर. दे आर लाइक क्लाउड्स पोरिंग वाटर ऑन द ग्राउंड दैट नरिशेस द फ्रूट्स ऑफ द लव ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड. द डिवोटीज ईट दैट फ्रूट टू देयर हार्ट कंटेंट एंड व्हाटएवर रेमेनेंट्स they live are eaten by the general populace. Thus they live happily. तो ये कविराज गोस्वामी के मन में आया कि अभी इतना मैंने आपको चैतन्य चरितमृत दिया है, इसको आप पियो 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 और उसके बाद इसको बांटो बांटो बांटो. तो ये कौन सा सिद्धांत हो गया? जन्म सार्थक करी कर परोपकार. पहले स्वयं पियो, पहले स्वयं अपने जीवन को सफल करो और फिर दूसरों को ये अमृत बांटो. इसको जहाज में चढ़ते हैं तब क्या कहते हैं? जब ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाए तो अपने आप मास्क गिरेगा. पहले अपने नाक पे लगाइए, फिर बच्चों को लगाइए. हाँ, पहले अपने को नहीं लगाएंगे तो दूसरे को लगाए तब तक आप ही मर जाएंगे. तो ये वो फार्मूला है, पहले स्वयं पियो फिर दूसरों को पिलाओ. इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मैंने ये शास्त्र लिखे कि आप पढ़ो, ये आपके पढ़ने के लिए. विशेष रूप से उन्होंने लिखा भक्ति रसामृत सिंधु की कमेंट, जो समरी मैंने लिखी, दो ही समरी प्रभुपाद ने लिखी. एक कृष्ण बुक समरी लिखा है 10th कैंटो का, एक भक्ति रसामृत सिंधु समरी लिखा है. क्योंकि उनके पास टाइम कम था कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है और भक्तों को, ये भक्तों के लिए लिखा है मैंने, हमारे भक्तों को इसको पढ़ना चाहिए अच्छी तरह से. तो ये मुख्य बात है कि ये हमारे लिए है. अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं. चेतना लीला अमृत पूरा, कृष्णा लीला सुकर पूरा. चेतना लीला अमृत पूरा, चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है वो तो पूरा ही पूरा अमृत है. कृष्णा लीला सुकर पूर, कर्पूर कहते हैं कैम्फर को, ये जो कर्पूर, और कर्पूर का एक सफेद रंग होता है तो गोर रंग को भी कर्पूर कहते हैं असल में. तो असल में कर्पूर एक अर्थ सीधा तो ये निकलेगा कैम्फर है, लेकिन वैसे कर्पूर जैसा रंग राधा रानी का है, गोरा ऐसा ही सफेद. तो कृष्ण लीला के अंदर राधा लीला है, वो चैतन्य लीला में कैसे प्रकट होके आई है राधा भाव में, इन दोनों का जो मिश्रण हो गया है चैतन्य महाप्रभु में, ये बहुत मधुर है. इसमें मुख्य बात ये है, ये कथा आपको कई बार बताई है प्रभुपाद का पास टाइम. बंगाल में लैंडलॉर्ड जिसके बड़े बंगले में मंदिर था आरंभ के दिन में, वो चैतन्य महाप्रभु का बड़ा भक्त था. तो उन्होंने उस वक्त अच्युतानंद महाराज को बोला कि देखो दूध और चीनी पहले होता है, लेकिन दोनों को मिलाने से रसगुल्ला बनता है, वो बड़ा टेस्टी होता है. तो राधा और कृष्ण दूध और चीनी के बराबर है, दोनों मिलके रसगुल्ला बन जाता है वो चैतन्य महाप्रभु है, वो बड़ा रसीला है. वो अच्युतानंद महाराज श्री प्रभुपाद से पूछते हैं, श्री प्रभुपाद वो ऐसे कह रहा है, प्रभुपद का इसका एक अर्थ ये है कि कृष्ण और राधा तो पहले थे, तो इसका मतलब वो तो पहले ओरिजिनल है, उन दोनों को मिला के फिर रसगुल्ला बनाया. बोला ये तो समझ में आ गया, पहले कौन है बाद में कौन है, इन दोनों में महान कौन है? राधा कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु. तो श्री प्रभुपाद ने थोड़ी देर देखने के बाद दीवार पे एक चित्र में राधा रानी को, राधा रानी के चरणों को कृष्ण को घुटना टेक के बैठ के दबाते देखा. प्रभुपाद ने देखो राधा रानी महान है, क्यों कृष्ण उसके पांव दबा रहा है, तो राधा रानी महान हो गई. फिर दूसरे चित्र में देखा कि भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के चप्पल उठा के जा रहे हैं। बोले देखो नंद बाबा कृष्ण से बड़े हैं। और फिर सिद्धांत बताया भगवान से भगवान के भक्त बड़े, भगवान से भगवान के भक्त बड़े हैं। और इसलिए कभी कभी प्रभुपाद जी जब कटाक्ष में मतलब ऐसे टांटिंग के लिए कहते थे, मायावादी वांट्स टू बिकम गॉड, वी वांट्स टू बी फादर ऑफ गॉड। वो भगवान बनते हम उनका बाप बनेंगे, क्योंकि भगवान का बाप भगवान से बड़ा होता है। तो भगवान से भगवान का भक्त बड़ा होता है। कोई कहे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है, तो कृष्ण भगवान है या अर्जुन भगवान है? कृष्ण भगवान है। तो ऊपर कौन बैठा है, कृष्ण बैठा है अर्जुन बैठा है? अर्जुन ऊपर बैठा है, भगवान नीचे बैठा है, और भक्त ऊपर बैठा है। भगवान घोर ड्राइवर बना है और भक्त मालिक बन के बैठा है। तो भक्त भगवान से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? भक्त भगवान से बड़ा है। तो यहां चेतना महाप्रभु भक्त के भाव में है, वो नाम अमृत लाए हैं। और चेतना कृष्ण लीला कैसी है? कपूर जैसी है। फिर कहते हैं दुई मिली है सो माधुर्य, इन दोनों को मिलाएंगे तो बहुत सुमधुर हो जाएगा, मधुर नहीं सुमधुर हो जाएगा। असल में क्या है कि कृष्ण लीला में राधा कृष्ण के जो भाव हैं वो एक तो कलयुग के और फिर विषयी ग्रस्तियों के दिमाग में बैठने वाले नहीं है, क्योंकि उनका कंसेप्ट राधा कृष्ण को स्त्री पुरुष समझेंगे तो उनके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। लेकिन चेतना महाप्रभु वही राधा है, लेकिन है अब कृष्ण है लेकिन राधा के भाव में है, तो पुरुष लीला है। तो उस लीला में कहीं भी वो राधा रानी की तरह विलाप भी करे तो उसमें किसी को संसारी विचार नहीं आ सकता है। तो चेतना महाप्रभु की वही राधा लीला है लेकिन बहुत मधुर मीठी, इसलिए है कि सब उसका आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए ये चेतना महाप्रभु को पतित पावन कहते हैं। बड़े दयालु हैं कि वो राधा कृष्ण की लीला को चेतना महाप्रभु सब, अब मंजरी और राधा और कृष्ण ये सब पुरुष बन के आ गए, तो कलयुग में इस लीला को ऐसे किया है तो उसमें आपत्ति नहीं। अब गदाधर पंडित को राधा रानी है, चेतना महाप्रभु उसको आलिंगन करे, या जगदानंद है वो सत्यभामा है, उनको आलिंगन करते हैं महाप्रभु, एक दूसरे को गले लगाते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है, किसी को देखने में कोई चर्चा नहीं। अब रूप मंजरी ये सब मंजरियां हैं, ये जाए उन तो, लेकिन कृष्ण लीला में इनको पढ़ेंगे तो हमारा जो स्तर है उसको कैच नहीं कर पाएगा, उसको समझ भी नहीं पाएगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन महाप्रभु की लीलाओं को पतित भी समझ सकते हैं आसानी से, ये उन्होंने बड़ी कृपा की। तो ये दोनों लीलाओं को मधुर किया, इसका मतलब कृष्ण राधा भाव में आकर चेतना महाप्रभु के रूप में उन्हीं राधा कृष्ण के लीलाओं को सुलभ कर दिया, सबके लिए सुमधुर कर दिया, सब समझ सकते हैं। नहीं तो प्रभुपाद को किसी ने कहा कि आप रासलीला बोलिए, बोला मैं नहीं, आप उसको समझ नहीं सकते हैं, नहीं नहीं आप एक तो बोलिए, नहीं आप नहीं समझ सकते। तीन बार के बाद प्रभुपद कहे मैं उसके कहने के लायक नहीं हूं, अब क्या कहें प्रभुपद, आई एम नॉट फिट टू स्पीक दैट, मेरा वो अधिकार नहीं है कहने का। तो कहीं प्रभुपद ने ऐसे रासलीला के ऊपर प्रवचन किया है ऐसा मिलता ही नहीं, वो सिद्धांतों के ऊपर बोला है। लेकिन चेतना लीला के ऊपर तो 66 में इस्कॉन स्थापना के समय ही चेतना महाप्रभु चेतना चरितमृत के लेक्चर मिलेंगे, भागवत के लेक्चर नहीं मिलेंगे, भगवत गीता और चेतना चरितमृत के मिलेंगे। भागवत वो अंतरंग रहस्य कृष्ण बुक में लिख दिया सारा, लेकिन प्राय प्रचार किया हुआ ऐसा नहीं मिलता है, भक्तों के संग में कहा है। तो वो काफी गहरी लीला है, लेकिन दोनों का मिश्रण होने से ये मधुर हो गई। साधु गुरु प्रसादे तहा ये आस्वादे, साधु गुरु प्रसादे, ये इतनी मिठी हो गई है। अब साधु गुरु प्रसादे बाय द मर्सी ऑफ द सेंटली पर्सन्स एंड द डिवोटीज इन द ट्रांसेंडेंटल पोजिशन, साधु को लिखे, साधु के लिए लिखा है सेंटली पर्सन, और गुरु के लिखा लिए लिखा है डिवोटी इन द ट्रांसेंडेंटल पोजिशन। ये क्या करते हैं? आस्वादे, वो असल में इन दोनों के मिश्रण लीला का रसास्वादन करते हैं। इसका एक भाव ये है कि जब भागवत कथा करें तो उसमें चेतना महाप्रभु का प्रसंग आना चाहिए, और जब चेतना महाप्रभु की कथा करें तो उसमें भागवत का प्रसंग आना चाहिए। इन दोनों का आपस में मिश्रण है, ये मिले हुई दोनों चीजें हैं। और ऐसे तो भागवत के अंदर राधा कृष्ण के सारा ही लीला ऐसा लिखा है, महाप्रभु कहते हैं भागवत कृष्ण के समान है और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक ही बात है, तो इसलिए दोनों लीलाओं को साथ साथ ले चलना चाहिए। तो ये इसका आस्वादन करते हैं साधु। सेई जाने माधुर्य प्राचुर्य, सेई सेई का मतलब ऐसे साधु, और गुरु इसका मतलब जो एडवांस डिवोटी हैं वो इसका रसार सही जाने, वही जानते हैं माधुर्य प्राचुर। माधुर्य, माधुर्य रस मतलब राधा कृष्ण के प्रेम के भाव को चैतन्य महाप्रभु के विलापों से, उसके जो जो भाव है उनसे जानना आसान है, वो जानते हैं। द पास्ट टाइम ऑफ चैतन्य महाप्रभु आर फुल ऑफ नेक्टर and the pastime of Krishna are like camphor. When one mixes these, they taste very sweet. By the mercy of the pure devotees, whoever tastes them can understand the depth of that sweetness. जो इसको पिएगा, उस जो इसको खाएगा, उसके उसके रस की गहराई को, प्रेम को जानेगा। साधु गुरु, ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ये ऊपर के लेवल का है कि इसके रस का आस्वादन करेगा। आगे कहते ये लीला अमृता विनय, यही लीला अमृत विनय। अगर इन दो लीलाओं के अमृत को कोई नहीं पाता है, बिना मतलब उसके बिना, यही लीला अमृत विनय खाए यदि अन्न पाने, केवल खाना खाता है और कथा नहीं सुनता है, इन लीलाओं का अगर श्रवण नहीं करता है, केवल भोजन करता है, तभी भक्तेर दुर्लभ जीवन, दुर्बल जीवन, तो वो भक्त कमजोर पड़ जाएगा, वो भक्त कमजोर पड़ जाएगा। इसका अर्थ ये कि केवल प्रसाद खाए और कथा नहीं सुने तो भक्त दुर्बल हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, इसका अर्थ ये। यार एक बिंदु पाने, अगर इस कथा अमृत का एक बिंदु, एक ड्राप भी मिल जाए, उत फूलित तनो मने, उनका तन मतलब शरीर, मन मतलब मन माइंड, उत फूले मतलब जैसे प्रफुल्लित हो जाएगा, ब्लॉसमिंग जो है वो आनंदित हो जाएगा, शक्तिशाली भी होगा, आनंद उत्फल, वर्ड टू वर्ड मीनिंग में उत्फल के लिए शब्द लिखा है। तनो मने बॉडी एंड माइंड बिकम्स जुबिलेंट, उत्फल, जैसे ब्लॉसम, ये गुल फूल खुल जाए, ऐसे खिल जाते हैं। हास है तो पहले जब उत्फुल होंगे तो क्या करेंगे, उल्लास में हो जाएंगे, उत्फुल मतलब उल्लास, एहलाद, तो करेंगे क्या जब उल्लास में होंगे, तो हासे गाए करे नर्तन, गाएंगे नाचेंगे और बहुत आनंद से ये अमृत पिएंगे तो मस्त हो जाएंगे। अब इस श्लोक का प्रभुपाद ने थोड़ा सा छोटा तात्पर्य दिया है, ट्रांसलेशन, मैन बिकम स्ट्रांग एंड स्टाउट बाय ईटिंग सफिशिएंट ग्रेन्स, बट द डिवोटी हु सिंपली ईट्स ऑर्डिनरी ग्रेन्स बट डज नॉट टेस्ट द ट्रांसलेंट पास टाइम ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एंड कृष्ण ग्रेजुअली बिकम्स वीक एंड फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रांसलेंट पोजिशन. However, if one drinks but a drop of the nectar of Krishna's pastime, his body, mind become to bloom, and he begins to laugh, sing, and dance. Shri Prabhupada ka purport. All the devotees connected with Krishna conscious movement, aap aise samajh lo, all of you must read all the books that have been translated into bracket Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita and others. Otherwise, after some time, the devotees will simply eat, sleep and fall down from their position. Thus they will miss the opportunity to attain an eternal blissful life of transcendental pleasure. तो इस श्लोक के आधार पर प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने कहा जैसे हमने नॉर्मल लोगों का सुबह का ब्रेकफास्ट है, लंच है, फिर डिनर है, जनरली तीन टाइम खाने का नियम है, और कुछ जगहों पे दो टाइम खाते हैं, रात को दूध पीते हैं, सम पीपल गो लाइक दैट. सो उन्होंने हमारे को कहते हैं the breakfast should be like a prince and lunch should be like a king and dinner should be like a beggar. So Srila Prabhupada ne hamare breakfast ke diya liye diya bhagavatam, subah bhagavatam ka breakfast karo, wo breakfast ke brunch karo, aur phir evening ko लंच करो भगवत गीता का, और रात को दूध पियो कृष्ण बुक. इन्होंने हमारे को स्पिरिचुअल डाइट दिया, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई ये काम नहीं कर रहा. कौन, मैं सुन रहा था एक महाराज कहता अगर इस तरीके से हमने ये कृष्ण बुक पढ़ा होता तो 90 चैप्टर तीन महीने में पूरा होता, साल में चार बार पूरा होता. तो आज बार बार पढ़ते 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 तो सब जगह उठते बैठते सोते कृष्ण लीला ही दिखती, लेकिन हम ये कर नहीं पा रहे. एक चैप्टर रोज का पढ़ने का नियम, भागवत का सुबह, शाम को भगवत गीता और रात को, ये हमारे को प्रिस्क्राइब डाइट है, लेकिन हम इसको खाते नहीं, इसलिए कमजोर हो जाते. ये हमारी समस्या है, वी आर नॉट एबल टू डू दिस. लेकिन ये प्रभुपाद ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तीनों चीजें रेगुलरली हमारे जीवन में होनी चाहिए. अब 79 वर्स को पढ़ते हैं. ए अमृत कर पाना यार सम नहीं आना, ये कथा अमृत, लीला अमृत, नाम अमृत, भक्ति रस अमृत का पान करो, यार सम इसके बराबर नहीं आन, और कुछ भी नहीं. कथा अमृत के समान और कुछ भी नहीं है, क्योंकि शरीर तो केवल शरीर को, भोजन तो केवल शरीर को पोषण देता है, ये कथा आत्मा का भोजन है. तो आत्मा में आनंद, आत्मा आनंद, शरीर आनंदमय नहीं है, आनंदमय आत्मा है. जब ये कथा मिलेगा तो आत्मा से आनंद, ये नाचना गाना ये आत्मा का काम है, शरीर का काम नहीं. आत्मा कथा से पोषित होता है, कथा आत्मा का पोषण है. चित्त करी सुदृढ़ विश्वास, इस बात के ऊपर अपने मन में निश्चय कर लो, दृढ़ विश्वास कर लो कि भगवान की कथा के समान और कोई चीज नहीं. ना पड़ कुतर का ग्रते गरते अमेध्या कर्कश आवरते, बेकार का टाइम वेस्ट मत करो. कुतर्क मैंने मतलब कुतर्क का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स, बेकार की आर्ग्यूमेंट्स करके टाइम वेस्ट मत करो. अमेध्य अमेध्य मेध्य कहते हैं बुद्धि को, अमेध्य का मतलब बेवकूफ मूर्ख, अमेध्य कुतर्क आवर्ते इन ए अनटचेबल हार्श विरल पुल। अमेध्य करकत आवर्ते, आवर्ते जो वही चीज दोबारा उल्टी सीधी घूमे, विरल पुल में क्या होता है वही पानी घूमता है, आवर्त मतलब घूमने। और अमेध्य मेध्य कहते हैं बुद्धि को, अमेध्य मतलब मूर्खों वाला, करकश करकश मतलब जो यहां शब्द अनटचेबल लिखा है प्रभुपाद ने, हार्श करकश मतलब हार्श, और अमेध्य मतलब जिसको हाथ नहीं लगाना चाहिए कोई, वो ऐसे कचरे में मत पड़ो। याते पड़ीले है सर्वनाश, इस चक्कर में पड़ेंगे सब नाश हो जाएगा। द रीडर शुड रेलिश द वंडरफुल नेक्टर बिकॉज नथिंग कंपेयर टू इट। Keeping their faith firmly fixed within their minds, they should be careful not to fall into the pit of false argument or the whirlpool of unfortunate situations. If one falls into such position, he is finished. The whirlpool of unfortunate situation. Kya hai? Whirlpool of unfortunate situation kya hai? इसमें गिरेगा तो निकल नहीं चाहेगा। सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये अमृत न पीकर और जाके बाहर का शराब पीना शुरू किया। शराब का मतलब है आप कहते हैं पानी को, और सड़ा का मतलब सड़ा हुआ, जो सड़ जाए पानी उसको जराब कहते हैं। सड़ जाए का मतलब जो डिकम्पोज हो जाए, जो बिगड़ जाए उसको कहते हैं शराब, और पीने से आदमी होता है खराब। तो ये हो गया अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, तो उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए, वो सेंस एंजॉयमेंट आर्ग्यूमेंट और फिर सेंस एंजॉयमेंट, तो फिर सर्वनाश हो जाएगा। श्री चैतन्या नित्यानंद अद्वैतादि भक्त वृंद आर यत श्रोता भक्त गण तुमा सबार श्री चरण करी श्रे विभूषण अभिष पूर्ण। अब कहते बेकार के टाइम मत वेस्ट करो, चेतना नित्यानंद अद्वैत और भक्त जितने वृंद है, और दूसरे जो श्रोता भक्त गण है जो इनकी कथा सुनते हैं, तहां तुम सारा श्री चरण उन सबके श्री चरणों को करी श्री विभूषण अपने सर के ऊपर रखो, सर का मुकुट बना लो, आर्नामेंट बना लो, या इते अभीष्ट पूर्ण, उससे आपकी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। इन कंक्लूजन आई सबमिट टू श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु एंड ऑल अदर डिवोटीज एंड द रीडर्स दैट आई एक्सेप्ट योर लोटस फीट एज द हेलमेट ऑन माय हेड। प्रभुपाद ने विभूषण को लिखा है हेलमेट, हेलमेट विभूषण का मतलब जैसे मुकुट होता है, भूषण भूषण सर का भूषण, क्योंकि करे श्री विभूषण, श्री सिर का भूषण क्या है, सिर का आभूषण क्या है, मुकुट। इन दिस वे ऑल माय पर्पसेस विल बी सर्व्ड। अब ये तो अपना कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, लेकिन हम सबको ऐसा भाव होना चाहिए कि पंच तत्वा और परंपरा के चरणों को, चरणों की धूलि को सर के ऊपर रख के और इस अमृत पान करने की इच्छा करने से ये हमारा सफल होगा। जन्मे जन्मे यही अभिलाष तांडे चरण ए रवास, ये जो भगवान भागवत पुरुष है इनके चरणों का वास, छह गोसाएं इनके चरणों का वास, ये भाव है। यह अब आगे के, अब आगे इतने में संतुष्टि नहीं हुई, आगे कहते हैं श्री रूप सनातन रघुनाथ जीवा चरण श्री धरि यारा करुआश। रूप सनातन रघुनाथ जीवा और गोस्वामी जितने हैं श्री धरि, उनको अपने सर के ऊपर धारण करे यारे करुआश, ये आशा करता हूं। कृष्ण लीला अमृतानवित चेतना चरित अमृत क कहे किछु दिन कृष्ण दास। इनकी कृपा से मैंने कृष्ण लीलामृत और चेतना चरितमृत को कुछ थोड़ा कहने का प्रयास किया है। तो इसका मतलब चेतना चरितमृत में कृष्ण लीला शामिल है, पूरी अंदर मिक्स है, दोनों का आपस में इंटरवोवेन है सारे का सारा। टेकिंग द फीट ऑफ श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एंड जीव गोस्वामी, ऑन माई हेड आई ऑलवेज डिजायर देयर मर्सी। दस आई कृष्णदास हम्बली ट्राई टू डिस्क्राइब द नेक्स्ट ऑफ द पास्ट टाइम श्री चेतना महाप्रभु व्हिच आर मिक्स्ड विद द पास्ट टाइम ऑफ लॉर्ड कृष्ण। अब दो श्लोक और हैं, अब संस्कृत श्लोक आ गया। अब ये भी एक ये परंपरा पहले चलती थी, अब थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन दोनों ठीक है। श्रीमान मदन गोपाल गोविंद देव तुष्ट चैतन्या अर्पितम अस्तव एतत् चैतन्य चरित अमृत। अब कहते हैं मैं चैतन्य चरितमृत लिखी है इन सब की कृपा से, अब अर्पण किसको करूं। श्री मदन गोपाल, श्री मदन गोपाल मदन मदन मोहन, गोविंद देव तुष्ट और गोविंद देव की संतुष्टि के लिए, इन दोनों तीन ठाकुर हैं गोरियों का प्राण, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ये तीनों गोरिय वैष्णव का प्राण, ये हमारे आराध्य हैं, तीनों प्राण हैं। तो सिद्धांत के ठाकुर हैं मदन मोहन और संबंध के ठाकुर हैं मदन मोहन। गोविंद देव अभिधेय भक्ति के ठाकुर हैं और रूप गोस्वामी के ठाकुर हैं, और रूप गोस्वामी रस आचार्य हैं, जो भक्ति रस का दिया है वो रस, वो सिद्धांत आचार्य सनातन है, रूप गोस्वामी रस आचार्य हैं और उनका आराध्य देव गोविंद संबंध अभिधेय है। अभिधेय मतलब भगवान की भक्ति करने का, भक्ति के रस के अमृत का सागर। गोपीनाथ प्रयोजन के ठाकुर हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन आचार्य हैं, लेकिन वैराग विद्या के आचार्य हैं, वैराग की मूर्ति हैं श्री राधा कुंड निवासी क्या गोस्वामी, सोलह साल चेतना महाप्रभु की अंतर लीला के साक्षी हैं श्री दास गोस्वामी। वैसे दास गोस्वामी कहते हैं कौन से, राधा कुंड पे जिनकी समाधि है, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये वैराग ये प्रयोजन आचार्य हैं। फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ मदन गोपाल एंड गोविंद देव वी प्रे दैट दिस बुक श्री चैतन्य चैतन्य में बी ऑफर्ड टू श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनकी कृपा से ये चैतन्य महाप्रभु की लीला चैतन्य महाप्रभु को अर्पण कर रहे हैं। एक संस्कृत का लंबा आखिरी श्लोक लिख के मध्य लीला पूरी होती है। तदिदम अति रहस्यम गौर लीलामृतम यत, ये जो गौर लीला है ये अति रहस्य है, रहस्य मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। फिर कहते हैं कुछ लोग हैं खल समुदय कौलैर नाद्रम तैर अल्पभ्यम अलभ्यम, खल मतलब बदमाश, कुछ ऐसे हैं समुद्य, कुछ ऐसे खल समुद्य कौलई, कौलई का मतलब है पिग, सुअर जैसे कुत्ते जैसे भौंकने वाले लोग, ऐसे कुछ हैं नाद्रितम तैर अल्पभ्यम, वो चैतन्य लीला का अनादर करते हैं अथवा मैंने जो लिखा है इसका अनादर करते हैं। क्षतयम इह कामे स्वादितम तत समन्तात् सहृदय समो सुमनोभि मोदमेशां तनोति। भोगते रहे हमारा क्या करेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे सुहृद हैं, ऐसे शुभ चिंतक हैं, साधु हैं, जो इसका रसास्वादन करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। चेतन चैतन्यमृत फर्स्ट टाइम ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु कंसिडर वेरी सीक्रेट लिटरेचर, बहुत कॉन्फिडेंशियल ये साहित्य है। इट्स द लाइफ एंड सोल ऑफ ऑल डिवोटीज, दोज हु आर नॉट फिट टू रिलिश दिस लिटरेचर, हु आर एनिमियस लाइक हॉग्स एंड पिग्स, विल सर्टेनली नॉट एडोर इट। हाउएवर this will not harm my attempt. These pastime of Lord Chaitanya Mahaprabhu will certainly please all saintly people who have clear hearts. इसका मतलब जिनका हृदय शुद्ध है उनको इसका रस आस्वादन होगा। They will certainly enjoy it, उनको बड़ा इसमें आनंद आएगा। We wish that this will enhance their enjoyment more and more. Anandam buddhi vardhanam, unka anand ko badhane wala hai. To ab isko dekh kar Prabhupada ji ne phir ek note likh diya ki jab Kaviraj Goswami ne Chaitanya Chaitanya likha tab bhi koi us waqt ki unke critic the, उस वक्त ही कोई हाग पिग लाइक लोग थे, खल थे। हाग पिग लाइक लोग का मतलब है कि उसको हलवा दो तो भी वो जाके स्टूल ही खाएगा। तो इतना सारा अमृत परोसा है फिर भी वो कहते नहीं नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो स्टूल ही चाहिए। ये हिग पाक प्रभुपाद कहते थे ये जो सुअर है इसको आप हलवा दो ये नहीं खाएगा, तो भक्तों को इसको विश्वास नहीं है। वो हलवा लेके दिया तो कोई खाया नहीं, सुअर ने इसको फेंक दिया और जाके फिर वो भी स्टूल खाया गटर के अंदर, हलवा दिया नहीं खाया। तो ये एक्सपेरिमेंट करने गए थे। उनको विश्वास नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हलवा नहीं खाया, नहीं खाया उसने। The author of Chaitanya Chaitanya, Sri Krishna's Kaviraj Goswami, has condemned all his enemies by comparing them to the envious hogs and pigs. The Krishna conscious movement, which is spreading throughout the world, is being appreciated by sincere people, although they have never previously heard of Sri Chaitanya Mahaprabhu or Lord Krishna's pastime. ये प्रभुपद अपना realization लिख रहे हैं। बाहर की दुनिया में जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को सुना नहीं था, नाम भी नहीं सुना था, वो तो इसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। अब नाउ इवन द हायर प्रिस्टली सर्कल आर एप्रिशिएटिंग दिस मूवमेंट। प्रभुपाद जी जहां भी जाते थे क्राइस्ट क्रिश्चियन प्रिस्ट से मिलते थे, दे आर ऑल्सो एप्रिशिएटिंग द मूवमेंट। दे हैव कंक्लूडेड दैट दिस मूवमेंट इज वेरी वेरी नाइस एंड दैट दे हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम इट। नॉनदलेस In India, there are some people who say that they belong to this cult, but who are actually very envious of Acharya. ये प्रभुपाद ने जो लिखा है ये अपना realization है। They belong to this cult, मतलब चैतन्य महाप्रभु की cult को कहते हैं, belong करते हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर एनवियस ऑफ आचार्य। ये मल्टी ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। मीन्स दे आर एनवियस ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो किसके लिए लिख रहे हैं प्रभुपाद एक्चुअली? दे सेड वी आर फॉलो अप चैतन्य महाप्रभु बट वी डोंट एक्सेप्ट ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी आचार्य। ये कौन है उसके लिए प्रभुपाद ने लिखा है। दे हैव ट्राइड टू सप्रेस अवर एक्टिविटीज इन मेनी वेज, but as far as we are concerned, we follow in footsteps of Krishnadas Kaviraj Goswami and take them as envious pigs and hogs. वी सिंपली विश टू प्रेजेंट द पास्ट टाइम लॉर्ड कृष्ण चैतन्य महाप्रभु टू द बेस्ट ऑफ अवर एबिलिटी सो दैट दोज हु आर रियली ऑनेस्ट कैन क्लींस देयर हार्ट. वी होप दैट दे एंजॉय दिस लिटरेचर एंड बेस्ट ऑफ देयर ब्लेसिंग अपॉन अस. मतलब प्रभुपद कहते हैं आप जो पढ़ते हैं मेरे ऊपर कृपा करो. इट अपियर्स दैट इवन सच ए ग्रेट पर्सनैलिटीज एज कृष्णदास कविराज गोस्वामी मेट विथ सम एनवियस ऑब्स्टेकल्स व्हाट देन टू स्पीक ऑफ अस हु आर ओनली इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर इन दिस यूनिवर्स. वी आर सिंपली ट्राइंग टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ अवर स्पिरिचुअल मास्टर टू द बेस्ट ऑफ अवर एबिलिटी. ये इस वर्ष स्पेशल प्रभुपाद जी का अपना पर्सनल रियलाइजेशन है. तो इन सारे श्लोकों से हमको आज क्या लेना चाहिए पांच मिनट में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो हमारी भक्ति में हम कमजोर पड़ जाएंगे. ये मुख्य बात है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ टुडेज डिस्कशन कि अगर हम स्टडी नहीं करेंगे, इफ यू वी डोंट रीड आर हियर कृष्ण कथा चेतन कथा, देन वी विल बिकम वीक इन अवर डिवोशनल सर्विस. और दूसरा ये है कि व्हेन वी प्रीच वी विल ऑलवेज हैव अपोजिशन. अगर लोग कुछ एनवियस मिलेंगे जो क्रिटिसाइज करेंगे, जब इन बड़े लोगों को किया है तो हमको करें कोई बड़ी बात नहीं है. और प्रभुपद कहता है बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग देयरफॉर पीपल आर डूइंग अपोजिशन. इट मींस वी आर दिस इज अ प्रूफ दैट वी आर सक्सेसफुल. भाई आदमी कोई बहुत सफल होगा तो दूसरे उसके एनिमी बनेंगे. नहीं पढ़ा होगा सोया हुआ तो कौन एनिमी पड़ेगा. सो बोथ वेज इट इज पार्ट. वी हैव टू टेक पॉजिटिव. पीपल मे अपोज अस बट वी हैव टू कंटिन्यू अवर प्रीचिंग टू प्लीज द वैष्णव हरि गुरु वैष्णव. और तीसरी बात जो इसमें मिलती है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाटएवर वी डू वी शुड ऑफर टू द थ्रू द परंपरा टू द कृष्ण बलराम गौर निताय राधा श्याम व्हाटएवर. इट्स नॉट वी शुड टेक क्रेडिट. ये तीन चीजें आज के इस डिस्कशन से मिलती हैं. एक हमारे पर्सनल एप्लीकेशन के लिए है कि वी शुड regularly study at home or regularly attend classes, but we should be connected with the Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita and Chaitanya Charitamrita. और दूसरा जितना हमसे हो सके इसका प्रचार करने का प्रयास करें. And not be afraid of people. If they become critics, it doesn't matter. वो करने दीजिए, कोई बात नहीं. हाथी जले बाजार, कुत्ता भौंके हजार. जब हाथी चलता है ना तो बहुत से कुत्ते भोंकते, लेकिन हाथी देखता ही नहीं है उनकी ओर. क्या करेगा भाई, कुत्ते क्या करेंगे हाथी के. हाथी जब बाजार में जाएगा तो कुत्ते भोंकते क्या करेंगे हाथी का. हाथी देखता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करेगा, उसके तो देखने की जरूरत नहीं. क्या करेगा हाथी का, क्या बिगाड़ेगा. तो ये इसलिए प्रचार का काम करना चाहिए. और तीसरा हम्बलनेस होनी चाहिए, क्रेडिट नहीं लेना चाहिए. मैंने ऐसे किया नहीं, ये सब प्रभुपाद की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, गोस्वामी की कृपा है, नित्यानंद की कृपा है. कहीं भी हमें सफलता मिले, चाहे एक बुक भी डिस्ट्रीब्यूट करें, इमीडिएटली गिव द क्रेडिट टू द परंपरा. डोंट टेक क्रेडिट आवर सेल्फ. तो उसमें क्या है कि इट विल बी इजी फॉर अस टू स्टे विद इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. नहीं तो डिवोटी एनवियस होना शुरू हो जाएंगे. मैंने किया तो फिर दूसरा कॉम्पिटिशन हो जाएगा. So, सबने कहा हमने आपने किसके लिए, गुरुजी के लिए किया तो खत्म. किसी के लिए, प्रभुपाद के लिए क्या समाप्त. कोई झगड़ा नहीं है क्योंकि गौर नेता की प्रसन्नता के लिए क्या, नो प्रॉब्लम. तो ये तीन बातें आज के इन श्लोकों से हमारे को ग्रहण करनी चाहिए. हरे कृष्ण. कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, एनी क्वेश्चन आर कमेंट. हाँ जी. ब्रह्मा वो क्या है कि वो क्रिएशन का है कि गर्भोदक्षा विष्णु, उसमें से निकले ब्रह्मा, ब्रह्मा करते हैं संसार की सृष्टि। तो ये जो सारे विष्णु है ये भगवान की कला है, या ये उसका लिखा है कि ये सब भगवान गोविंद के एक्सपेंशन या एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन है इसका। ये वही श्लोक है। श्लोक है क्या आपके पास, कौन सा है? जगत अंड विधान करता ब्रह्मा इस सारे लोक की सृष्टि ब्रह्मा करते हैं। जब सृष्टि करनी होती है तो भगवान गर्भोदक्षा विष्णु के पेट में होती है सारी सृष्टि। सारी सृष्टि अंदर होती है और जब पेट में होती है तो उसको कहते हैं प्रधान। जब बाहर निकलती है तो उसका नाम हो जाता है महत्तत्व। उसके ऊपर भगवान की पड़ती है दृष्टि, तो होती है सृष्टि। लेकिन वो सृष्टि होती कैसे है प्रैक्टिकल, ये तो है उसका फिलॉसफी। सृष्टि होती है ऐसे कमल का एक डंडा निकलता है। वो डंडा कोई हमारे कंसेप्ट में नहीं आएगा। वो डंडा ये पूरा संसार है। ये पाताल लोक में नीचे, पाताल लोक के नीचे सोए हुए हैं गर्भोदक्षा विष्णु, और उनकी नाभी तो नभ का मतलब आकाश जितनी बड़ी है, जितना आकाश है इतनी नाभी बड़ी है। वहां से ये जो कमल का डंडा निकला है ये 14 फ्लोर है, और नीचे पाताल लोक है और ऊपर सत्य लोक है। जो ऊपर का लोक है वहां कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, लेकिन इसमें से कुछ अभी तक दिखना कुछ नहीं रहा है, डंडा ही दिख रहा है। अब ब्रह्मा जी बैठ के इन 14 लोकों का सृष्टि करते हैं। ये जो अंड है ब्रह्मांड का, इसके अंदर सृष्टि सारी ब्रह्मा करते हैं। और ब्रह्मा क्या करते हैं, ब्रह्मा सबको आकार देते हैं, संस्कार देते हैं। आकार का मतलब शक्लें देते हैं। आकार, आकृति, प्रकृति, संस्कृति, ये ब्रह्मा जी देते हैं। भगवान क्या करते हैं, भगवान सिर्फ सामान देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी की क्रिएशन को कहते हैं विसर्ग, और भगवान विष्णु की क्रिएशन को कहते हैं सर्ग। सर्ग का मतलब जीवात्मा, उनके कर्म और शरीर बनाने का सारा सामान ये देता है भगवान। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जीव के कर्मों के अनुसार अलग अलग उनको जोनियां देते हैं, अलग अलग उनको रूप देते हैं। तो रीअसेंबल करने का काम है ब्रह्मा जी का। सामान सारा भगवान देते हैं। अंड को, अंड का मतलब ब्रह्मांड, अंडे की शक्ल में ब्रह्मांड है गोल। तो इसलिए कभी कभी हिरण्य गर्भ भी कहते हैं ब्रह्मा जी को, कि इसकी सृष्टि करता है। तो ये अंड करता ब्रह्मा, ये सृष्टि के विषय में गोविंद, भगवान गोविंद आदि पुरुष है, उसके उसका एक गुण अवतार ब्रह्मा ये सृष्टि करता है। हाँ, अपनी ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गोविंद की कृपा से मैं ये कर रहा हूं। अभी ऐसे अगर कहेंगे तो पहले श्लोक भागवत के में क्या, महामुनि करते व्यासदेव, अपना कैसे लिखेंगे कि मैंने भागवत लिखा है। भाई जैसे हर एक कवि अपनी कविता में नीचे अपना नाम लिखता है ना कि ये कविता मेरी है, तो इस तरीके से ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कि मैं ब्रह्मा इस संसार का सृष्टि करता हूं, वो भगवान गोविंद का एक विस्तार हूं, वो अपनी पहचान करा रहे हैं कि भाई सृष्टि कैसे करता है भगवान। तो इसलिए ये पहला प्रश्न होता है भागवत के ऊपर भी कि भागवत में महामुनि करते व्यासदेव के करते, व्यासदेव ही लिख रहा है, फिर क्या कैसे लिखता है कि व्यासदेव महामुनि करते। भाई व्यासदेव कैसे लिखेगा कि मैंने भागवत को, मैं ही इस भागवत को, मैं ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने दी और मैंने इसकी रचना की, तो महामुनि कृत्य लिखा है, तो महामुनि का वहां अर्थ व्यासदेव किया हुआ है। इसलिए कभी कभी कुछ लोग कहते हैं महामुनि का मतलब भगवान विष्णु ने जो दी है, नारायण ने, वो महामुनि है। लेकिन महामुनि वैसे व्यास को मुनि कहते हैं, महामुनि व्यासदेव है। तो व्यासदेव कैसे लिखेगा मैंने भागवत लिखी है। तो इसलिए जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भजन लिखते हैं तो कहते हैं नरोत्तम दास कहे तो लिखते हैं, इस तरीके से ये ब्रह्मा जी ने अपना नाम लिखा है, तो जो अपना कार्य करते हैं वो उसका श्रेय नहीं देते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम बजामे, ये गोविंद का मैं एक गुण अवतार हूं, उनका एक सेवक हूं और ये कार्य करता हूं, ऐसे बोला। हरे कृष्ण। सुचेतन चरितमृत की जय।